नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं।
जी,
डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा लिखी गई महाशक्ति की लोक यात्रा। ये पुस्तक अंग गायत्री परिवार की संस्थापिका वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी के दिव्य जीवन के बारे में है।
बिल्कुल, और इसमें उनके जीवन के मतलब जो अनुभव रहे, जो सत्य उन्होंने जिए, उनका एक बहुत भावपूर्ण संकलन है।
हाँ, और आज हम इसके एक खास अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
जी, कौन सा अध्याय?
अध्याय का शीर्षक है शिष्यों की करुण याचना क्षमा प्रार्थना। ये वो समय दर्शाता है जब वंदनीय माता जी अंग स्थूल रूप में नहीं रही।
और शिष्यों के मन में जो चल रहा था,
बिल्कुल,
जो भावनाएं थी,
बिल्कुल,
वो जो एक गहरी वेदना, एक आत्ममंथन का दौर था, यह अध्याय उसी को पकड़ता है।
हाँ, इसमें एक जगह शिष्य खुद से पूछते हैं, क्या ये वही हाथ है जिन्होंने माँ के चरण छुए थे?
हाँ, वही, क्या ये वही माथा है जिस पर उनका हाथ रखा गया था?
बहुत ही मार्मिक है।
चलिए इसी भाव को समझते हैं जरा।
जी, तो अध्याय की शुरुआत में शिष्यों की वो पीड़ा साफ दिखती है। उन्हें याद आता है जैसे गुरुदेव परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कभी किसी काम के लिए बुलाते थे।
हाँ।
और मान लीजिए कभी देरी हो गई या कोई भूल हो गई तो डांट भी पड़ती थी।
गुरु की डांट।
जी, और फिर वो सीढ़ियों से उतरकर उदास मन से जब माताजी के कमरे में जाते थे तो माताजी मुस्कुराकर कहती थी।
क्या कहती थी?
कहती थी, लगता है तुम लोगों को आज कुछ ज्यादा ही डांट पड़ गई।
अच्छा,
चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तो तुम लोग ही थोड़ा खा पी लो। मतलब वो स्नेह,
ये बात बहुत अहम है। मतलब माताजी का जो स्नेह था वो सिर्फ लाड़ प्यार नहीं था, गुरुदेव की कठोरता के बाद जो शिष्यों के हिसाब से वैसे कमी होती थी।
हाँ, कमी होती थी,
पर उसके बाद ये एक मरम जैसा था। वो समझाती भी थी कि डांट में तुम्हारा ही भला है।
जी,
लेकिन साथ ही वो डांट की पीड़ा कम करने के लिए कुछ खिला पिला भी देती थी। ये उनका वो रूप दिखाता है जो पोषण भी करता है और संतुलन भी बनाता है।
बिल्कुल सही कहा। और इसी याद से शिष्य और व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे, हमने अपने बचपने में ना समझी में या कभी आपस में लड़ने झगड़ने में जाने अनजाने माता जी के कोमल मन को कितना दुखाया होगा।
हाँ, ये अपराध बोध।
जी, वो स्वीकार करते हैं कि कर्म से, वाणी से और चिंतन से हम सबके अपराध कई हैं और इनमें से हर एक अक्षम्य है।
मतलब बहुत गहरी ग्लानी है।
और यहाँ देखिए, इस ग्लानी से मुक्ति के लिए वो कहीं और नहीं जाते।
नहीं,
उनकी आशा का केंद्र केवल और केवल वंदनीय माता जी है। वो काल देवता या भाग्य से क्षमा नहीं मांग रहे।
नहीं,
जिन्हें वो कठोर मानते हैं।
हाँ।
उनकी प्रार्थना सीधी है, माँ से है। माँ, अपने द्वार पर आए सबकी झोली भरने वाली माता, आज हम बच्चों की झोली अपनी क्षमा से भर दो।
ये सिर्फ माफी मांगना नहीं है, नहीं, ये उनके विश्वास को दिखाता है माता जी की क्षमा करने की शक्ति पर, उनके प्रति पूर्ण समर्पण पर अटूट विश्वास कि माँ तो करुणा का सागर है, वो हर नियम से ऊपर हैं।
और वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई अपराध इतना बड़ा है कि माफ नहीं किया जा सकता, तो सजा भी आप ही देना माँ, पर खुद से दूर मत करना।
ये देखिए, मतलब उनके लिए माताजी से दूर होने से बुरा कुछ नहीं, इंद्र का पद मिल जाए, ब्रह्म पद मिल जाए,
सब बेकार है,
सब व्यर्थ है। वो कहते हैं, हमारा समस्त संसार आपके श्री चरणों में सिमटा हुआ है, ये जीवन का परम सत्य है उनके लिए, माताजी का साथ ही सब कुछ है।
सही बात है। अच्छा, एक और बात आती है, जो माताजी स्थूल रूप से ओझल हो गई तो शिष्यों के मन में एक शक भी आता है।
स्वाभाविक है
कि कहीं माँ हमसे रूठ तो नहीं गई, आंखों से दिख नहीं रही, तो कहीं नाराज तो नहीं है।
हाँ, ये मानवीय दुविधा है। लेकिन फिर उन्हें अनुभव भी होते हैं।
कैसे अनुभव?
जैसे स्वप्नों में माताजी का दिखना।
हाँ,
वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, वात्सल्य बरसाता हुआ।
हाँ,
या फिर जीवन में कोई संकट आया।
हाँ,
और महसूस हुआ कि माँ की कोई अदृश्य शक्ति मदद कर गई।
बिल्कुल,
तो ये अनुभव उनके विश्वास को और पक्का करते हैं
कि माँ कहीं गई नहीं है।
बिल्कुल,
वो साथ ही है,
बस अब स्थूल आंखों से नहीं दिखती।
हाँ।
दिखने का माध्यम वो बदल गया है।
बिल्कुल,
ये स्थूल से सूक्ष्म पर विश्वास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
और आखिर में जो उनकी याचना है वो किसी दुनियावी चीज के लिए नहीं रह जाती।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
सब कुछ पीछे छूट जाता है। वो बस एक ही चीज मांगते हैं, खुद वंदनीय माता जी को।
जी, वो कहते हैं, हमें अब किसी और की नहीं, बस आपकी और सिर्फ आपकी चाहत है।
संसार में भटक कर थक गए हैं।
हाँ।
अब बस माँ की गोद चाहिए, त्राण चाहिए, संपूर्ण आश्रय।
बिल्कुल, तो ये अध्याय देखा जाए तो शिष्य के मन की कई परतें खोलता है।
गहरी पीड़ा है, अपराध बोध से जन्मी विनम्रता है, अटूट विश्वास है।
हाँ, और अंत में सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने आराध्य को पाने की तीव्र इच्छा, ये दिखाता है कि भौतिक रूप से किसी का न होना भी आध्यात्मिक रिश्ते को खत्म नहीं करता,
बल्कि शायद और गहरा कर देता है।
हाँ, और गहरा और आंतरिक बना देता है। जब बाहर का सहारा छूटता है तो अंदर का जुड़ाव और प्रेम वो और भी घना हो जाता है।
तो ये सब सुनकर मन में एक सवाल उठता है, जब कोई बहुत प्यारा या कोई श्रद्धेय व्यक्ति भौतिक रूप से साथ नहीं होता, तो उनकी वो जो सूक्ष्म उपस्थिति है, उसे महसूस करना, उस रिश्ते को जिंदा रखना, उसे और गहरा करना, ये असल में है क्या?
सही सवाल है।
क्या ये सिर्फ यादें हैं या चेतना के किसी गहरे स्तर पर जुड़ाव बनाए रखना है? इस पर सोचना चाहिए।
हाँ, विचार करने योग्य बात है।